Namaskar and a warm welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your anchor, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Subodh Mishra.
धन्यवाद लालिमा और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आधे घंटे के इस शो में हम शेयर बाजार और अर्थ जगत की खबरों पर गौर करेंगे. आज के समाचारों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया. नमस्कार विशाल, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
नमस्कार सुबोध जी, धन्यवाद.
पहले हेडलाइंस के साथ लालिमा अनेजा डैंग.
Thank you, Subodh. Yes, friends, let's begin with the headlines. Well, benchmark domestic equity indices extend losses to the third consecutive week. Sensex drops over 500 points. Nifty settles below 25,000. Prime Minister Narendra Modi lays foundation stone and inaugurates multiple development projects worth over 12,400 crore rupees in Bihar and West Bengal. And oil prices edge higher today after European Union's new sanctions against Russia.
देश के शेयर बाजारों में लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट जारी. सेंसेक्स 500 अंकों से ज्यादा गिरा, निफ्टी 25,000 के नीचे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार और पश्चिम बंगाल में 12,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी. और रूस के खिलाफ यूरोपियन यूनियन के नए प्रतिबंधों से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी. आइए पहली खबर पर नजर डालते हैं. देश के शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50 आज गिरावट के साथ बंद हुए. शेयर बाजार में लगातार तीसरे हफ्ते बिकवाली का दबाव कायम रहा. आज की गिरावट के पीछे आईटी क्षेत्र के शेयरों में भारी बिकवाली का हाथ है और अमेरिका और भारत के बीच व्यापार वार्ताओं से पहले निवेशक भी थोड़ी सावधानी बरत रहे हैं. आज सेंसेक्स 500 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ 81,757 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी आधा प्रतिशत से ज्यादा यानी 143 अंक गिरकर 24,968 पर बंद हुआ. बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इंडेक्स में 0.6% की गिरावट देखी गई.
वेल, डोमेस्टिक इक्विटी बेंचमार्क इंडिसेस निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स एंडेड इन रेड टुडे, एक्सटेंडिंग लॉसेस टू द थर्ड कंसेक्यूटिव वीक. Downward trend in equity benchmarks can be attributed to sharp selling in IT shares and the cautious attitude of investors ahead of the US-India trade discussions. At close, the 30-share index Sensex was over 500 points down at 81,757, while the Nifty index shed over 0.5% or 143 points to settle at 24,968. Broader indices at BSE also witnessed a sell-off today. Both mid-cap and small-cap index shed over 0.6% each.
सेंसेक्स में शामिल 30 में से 23 कंपनियों के शेयर नुकसान के साथ बंद हुए. सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें. एक्सिस बैंक में लगभग 5.25%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 2.3% से ज्यादा और भारतीय एयरटेल में लगभग 1.5% की गिरावट रही. सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयर ये हैं, बजाज फाइनेंस में लगभग 2%, टाटा स्टील में 1.5% से ज्यादा और आईसीआईसीआई बैंक में 0.5% से अधिक की बढ़त रही.
Well, in sectoral indices at the BSE, 18 out of 21 sectors ended down. In the top laggards, capital goods dipped 1.5%, Bankex slipped over 1.3%, and industrials fell over 1%. Among the top gainers, metal surged over 0.4%, focused IT climbed 0.05%, and services added 0.02%. The overall market breadth at the BSE was negative. As shares of 2,389 companies declined, shares of 1,660 companies advanced, while shares of 159 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 69 companies hit their 52-week high, while 19 hit their 52-week low. And what's the status of the rupee, Subodh?
Rupee आज अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 7 पैसे गिरकर 86.15 रुपए पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 98.32 पर चल रहा था. विशाल, अब बाजार की सारी खबरें हमने सुना दी. शेयर बाजार की 3 हफ्ते से लगातार बिकवाली का दबाव है. और अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो वैसे 5 दिन में जो गिरावट है 605 अंक है, अगर साप्ताहिक 5 कारोबारी दिन की बात अगर कर रहे हैं हम सोमवार से शुक्रवार की, और एक महीने में अगर हम गौर करते हैं सेंसेक्स तब भी 4% लगभग ऊपर है, 6 महीने के आंकड़ों पर देखें तो लगभग 6% ऊपर है। तो एक महीने और 6 महीने के आंकड़े तो फिर भी संतोषजनक हैं, लेकिन 3 हफ्ते से लगातार जारी गिरावट कुछ दिखा रहा है।
देखिए सुबोध जी, जो गिरावट का दौर शुरू हुआ 3 हफ्ते पहले, वो शुरू हुआ सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जिसे मैं मानता हूँ इस गिरावट के दौर का, वो है जो पहली तिमाही के जो आंकड़े आ रहे हैं, अर्निंग्स के जो आंकड़े आ रहे हैं वो उत्साहजनक नहीं है। दरअसल पिछले फाइनेंशियल ईयर के जो बड़ी कंपनियां हर सेक्टर की हैं उनकी जो परफॉर्मेंस रही उसके बाद उम्मीद बाजार को ये थी कि इस फाइनेंशियल ईयर की जो पहली तिमाही होगी उसमें अच्छे प्रदर्शन होगा, अच्छे आंकड़े सामने आएंगे, यानी कि प्रॉफिट होगा, मुनाफा कमाया जाएगा इन बड़े प्लेयर्स द्वारा हर एक सेक्टर में। लेकिन लगभग शायद पिछले हफ्ते हमने देखा कि जो आईटी सेक्टर है उसके भी जो आंकड़े पहली तिमाही के आए वो बहुत उत्साहजनक नहीं थे, इस वजह से लगातार 2 दिन बाजार में थोड़ी सी ज्यादा गिरावट देखी गई, फिर थोड़ा सा स्टेबलाइज जरूर हुआ। इस हफ्ते भी ये जो आंकड़े और आज की खास तौर पर बात करें तो बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा जिम्मेदार रहा इसको मार्केट को नीचे लाने में। एक्सिस बैंक का प्रदर्शन आज काफी बेहतर नहीं था और उसका असर जो है बाकी, जैसा कि आपने बताया, बाकी जो बैंकिंग स्टॉक्स थे उन पर भी देखने को मिला। तो पहली तो बात हुई प्रदर्शन की, पहले तिमाही के आंकड़ों की बात हुई। दूसरा जो बड़ा फैक्टर है वो है जो FIIs हैं, यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, अगर उन मोटे आंकड़ों पर नजर डालें, आपने 6 महीने के आंकड़ों की बात की, 1 महीने के आंकड़ों की बात की, अगर ये 7वां महीना कैलेंडर के हिसाब से, जी
जुलाई में FIIs अब तक सेलर्स ही हैं, बिकवाली का ही दबाव है।
जी बिल्कुल, और अगर इस पूरे साल की तरफ नजर डाल के देखें तो इस साल के जो पहले 3 महीने थे यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, उसमें FIIs नेट सेलर्स थे, यानी कि वो लगातार बिकवाली कर रहे थे, लेकिन उसके बाद के जो 3 महीने थे वो अच्छे आंकड़े थे, उन्होंने खूब जम के इन्वेस्ट किया। इस महीने में अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं लगभग 17,000 करोड़ रुपए की जो है बिकवाली FIIs द्वारा की जा चुकी है। अगर कोई पॉजिटिव स्ट्रांग इंडिकेशन नहीं मिलती है तो जो मेरा मानना है कि जो बचे हुए लगभग 7 दिन हैं, 8 दिन हैं, उसमें शायद ये बिकवाली का दौर जारी रह सकता है, और अगर ये जारी रहा तो उसका असर बाजार पर थोड़ा सा नेगेटिव देखने को जरूर मिलेगा। तो 2 ये बड़े फैक्टर हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़े से ग्लोबल फैक्टर्स की तरफ भी नजर डालें तो पूरे बाजार की नजर रहती है कि अमेरिकी मार्केट में क्या हो रहा है, अमेरिकी फेड रिजर्व जो है वो क्या कर रहा है और उससे उम्मीदें क्या हैं। ये हमने एक ट्रेंड देखा है कि खासतौर पे जब RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की भी बैठक होती है तो उससे 4-5 दिन पहले, हफ्ता भर पहले एक माहौल बनना शुरू हो जाता है कि क्या पॉजिटिव क्यूज हैं या फिर कुछ नेगेटिव क्यूज हैं, और ऐसा ही जब फेड रिजर्व की बैठक होती है तो उसके लिहाज से भी देखा जाता है। अब की बार फेड रिजर्व की बैठक की तारीख 30 जुलाई को तय हुई है और जिस तरह का एनालिसिस अमेरिकी बाजार या अमेरिकी आर्थिक विशेषज्ञों की तरफ से आ रहा है तो कोई पॉजिटिव क्यूज वहां से आते नहीं दिख रहे हैं। इस वजह से भी जो ग्लोबल सेंटीमेंट की जिसकी हम बात करते हैं मार्केट के लिए वो भी कुछ ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो ये मोटे तौर पर बड़े आंकड़े हैं अगर आज कल या इस हफ्ते की बात करें, लेकिन अगर आपने 6 महीने की तरफ इशारा किया तो उसमें एक और फैक्टर जुड़ जाता है और वो जुड़ जाता है वैल्यूएशन का, क्योंकि निफ्टी के वैल्यूएशन की बात करें तो पी इंडेक्स लगभग 22.6 के आसपास था और पिछले 2 साल का एवरेज 22.3 था। तो खासतौर पर अगर 7 महीने में 3 महीने तक लगभग 3.5 महीने तक FIIs जो है नेट सेलर्स हैं तो पी इंडेक्स पर नजर जाना बहुत लाजमी है।
When we talk about the earnings of the first quarter being low, Vishal, is there a fall in demand? And considering the fact that inflation has been low and under control over the last few months, why is there a fall in demand? Also, urban versus rural. Rural seems to be up. Is that true?
Well, I would say this is pretty much cyclical, Lalima ji, because and there's nothing more to worry about. The reason why I call it cyclical is because of the fact that you know, if you look at the inflation figures, and you're right there, rural is slightly lower than the urban inflation figures. Now, looks like there is a lot of demand as far as rural is concerned. But overall inflation figures, if we go through for the past 6 months or so, then it is pretty much clear that there is a huge improvement. So that means there is an improvement in the demand segment as well. So it's not just about demand being a factor for, a poor earning show by most of these big names and major names. Because if their quarter one earning is not up to the mark, and I'm saying up to the mark, it's not, I would still say, some experts would say, and I would agree with them, that it is not negative. It is not meeting the expectations. That is what is having an impact on the stock market, because the first quarter earning report is always compared with the overall, growth in the last financial year. And that is an added burden for the first quarter, financial reports, earning reports.
Right.
Unfortunately, this time around, one after the other, almost every sector, the big players are not able to go ahead and give those impressive numbers to the market, which perhaps investors are looking forward to. But again, this is cyclical. If you look at the FII as well, this is pretty much cyclical. First 3 months, they were net sellers. Now, second 3 months, as I was saying earlier, they were net buyers. And now, again, they're net sellers. So, of course, this is going to continue for a little bit time. I would say maybe another week, 7-10 days. And then perhaps if we get a positive cue from the Fed or from other, global markets, then this might be a reversal of the trend there.
जी विशाल आपने पहले भी कुछ sectors का जिक्र किया है और अगर हम बाकी पे भी देखें तो 21 में से 18 sector down रहे. और सबसे ज़्यादा अगर गिरावट है तो अपने बैंक का तो हमने बात की बैंक एक्स की, लेकिन कैपिटल गुड्स में भी लगभग 1.5% की गिरावट है. इंडस्ट्रियल में 1% की गिरावट है. बढ़ने वालों की बात कर लें तो मेटल में लगभग 0.5% है. आईटी तो 0.05 है, उल्लेख करना बेकार है. लेकिन कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल, क्योंकि बैंक एक्स की बात हम कर चुके हैं, इन पर कुछ कहना चाहेंगे.
देखिए, आपने कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल के आंकड़े जो रखे हैं और उनमें जो गिरावट की आपने बात दर्ज की, अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊं और पिछले साल के पहले क्वार्टर के आंकड़ों पर थोड़ा सा नजर डाल के देखें तो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा. जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि खासतौर पर जब हम पहली तिमाही में होते हैं तो बाजार के जो सेंटिमेंट्स हैं वो मार्केट की जो अर्निंग्स हैं, खासतौर पे सेक्टोरल अर्निंग्स जो हैं बड़े प्लेयर्स की, उनको रिफ्लेक्ट करती हैं. और ये वाइस वर्सा भी है, ये जक्स्टापोजिशन है. जो मार्केट की अर्निंग्स हैं वो बाजार के सेंटिमेंट को नहीं रिफ्लेक्ट करेंगी, लेकिन मार्केट की अर्निंग्स पे जो असर पड़ता है, जो बाकी फैक्टर्स का असर पड़ता है, उससे एक बात जरूर तय होती है कि अब आगे आने वाला जो समय है, यानी कि या अगले 15 दिन हों या 10 दिन हों, वो कैसे रहेंगे. कई बार हमने देखा है कि चाहे वो पहली तिमाही के आंकड़े हों, चाहे दूसरी के हों, चाहे तीसरी के हों, और खासतौर पे आपने कैपिटल गुड्स की बात की और दूसरे सेक्टर्स की बात की, उनमें जब ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो है पॉजिटिव क्यूज देते हैं तो यही आंकड़े ओवरशेडो हो जाते हैं और फिर हम इनकी तरफ ज्यादा ध्यान लगाकर नहीं देखते हैं क्योंकि मार्केट बड़ा पॉजिटिव चल रहा होता है. तो मेरा मानना है कि 0.5%, 1% की अगर गिरावट है तो, और खासतौर पे अभी हम केवल पहली तिमाही में ही हैं, अब दूसरी तिमाही में आ गए हैं, पहली तिमाही में ही है, लेकिन मोटे तौर पर ये रिकवरेबल है, नंबर एक. और नंबर दो, अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए, अभी और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, पॉजिटिव क्यूज आएंगे. और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं तो अगर एक बार और आरबीआई की तरफ से बोनांजा मिलता है तो उसके बाद बाजार में उछाल आना अपने आप लाजमी है. उम्मीद मैं कर सकता हूं कि जरूर आएगा और उसका असर एक साइक्लिकल तरीके से देखें तो उसका असर फिर जो है हमें डिमांड और सप्लाई और बाकी सेक्टर्स में भी देखने को मिलेगा.
Right. So sometimes global factors override the domestic factors, and it's a tough job for the central banks always to control inflation, to encourage growth, isn't it?
Well, it is indeed a very tightrope walk. Fortunately enough, as far as Reserve Bank of India is concerned, this time around they're positioned in a very very sweet spot right now because the inflation figures are going as per their benchmark rates, rather much below that, and it's it's not just one quarter. It has the low inflation figures have sustained over a period of time. So that means RBI has much more elbow room to go ahead and maneuver itself, play the long game as far as the monetary policy and market is concerned.
Right.
जी. अगली खबर एशियाई और यूरोपीय बाजारों से. प्रमुख एशियाई बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा. हांगकांग का हैंगसेंग 1.3% से ज्यादा बढ़कर बंद हुआ. सिंगापुर के स्ट्रेट टाइम सूचकांक में 0.6% और चीन के शंघाई कंपोजिट में 0.5% की बढ़त रही. दूसरी तरफ जापान के निक्केई में 0.2% और दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.1% की गिरावट देखी गई. यूरोप के प्रमुख बाजारों में आज शुरुआती कारोबार में ज्यादा हलचल नहीं दिख रही. समाचार लिखे जाने तक फ्रांस का कैक 0.08% ऊपर चल रहा था, जबकि लंदन के फुटसी और जर्मनी के डैक्स में मामूली गिरावट थी.
Alright, look at the US stocks. Well, US stocks advanced yesterday as strong corporate earnings and upbeat economic data boosted market sentiment. On Wall Street, the Dow Jones Industrial Average finished nearly 0.6% up. The S&P 500 rose over 0.5% and the Nasdaq Composite added 0.74%. Where do you see the US economy, particularly because the US and India trade deal is on, the negotiations are on, and who gains, who loses, how much, it's a tug of war as always.
Tamam aashayein, tamam aashankayein.
Agar hum pharmaceuticals, we are exporting 1/3 of pharmaceuticals from US, they come from India. So it's going to be disadvantaged people of US. How do you view the whole scenario?
Well, you know, this is, you put it very succinctly that this is a tug of war. But interestingly, this is a tug of war on which not only, Indian and US investors and people and policymakers are focused upon, but there are, global eyes are also set upon this particular deal, because this is going to then set a sort of a roadmap for United States, or rather, I would say, Trump tariffs, how to deal with Trump tariffs. President Trump, or rather US, has not been able to go ahead and hammer any significant deal with China per se. There are, bits and pieces here and there. As far as India is concerned, I believe perhaps this might be, once it is hammered out, all the nuances are fixed and put in place, this might end up being the role model for the other economies to go ahead and, see as to how they can deal with the Trump tariffs. That's one. And for the US economy as well, since you asked, it's going to be really important, because there have been a lot of upheavals in the US, economy in the past six to 7 months.
Yes, yes.
First, it was a tirade of Trump tariffs, then the Israel-Iran conflict, in between, of course, the Ukraine-Russia conflict has been having a very significant impact. But if we just look at today, there's a very interesting observation, wherein we say that because of the concerns regarding what US Fed might do or might not do, has had a slightly negative impact on the Indian markets. The US markets seemingly are going up. Because of a simple reason, that their first quarter earnings data is much more positive than what they expected. Again, I'm quote unquote, I'm putting the word here, expected,
right?
Because the expectations in the market do set up a trend, and once a trend has been set up, then it's not possible to break that trend in a session or two. It takes 2-3 days for the market to come out of that that trend circle. And that is why whereas in the Indian context, the first quarter earnings in most of the sectors and in the top companies of those sectors did not meet the expectations. In the US, despite not very positive sentiments coming in from the Fed, today was a good earning day for the US markets because of the first quarter data. So again, what needs to be understood here is that there are a mix of factors. We can't just blame one, or we can't just, tom-tom the other. Mm-hmm. We will have to look at it in a holistic way, both domestic and global factors as well. And therein lies the real, question or real tightrope walk for the US economy policymakers as well, as to how will they deal with it, because Trump tariffs will have a global impact. They will have a domestic impact as well. And whether or not the Fed Reserve's stance will be able to go ahead and match the strides of President Trump, who keeps on sometimes reversing his stand almost on a daily basis. So we'll have to wait and watch, because economic decisions cannot be changed overnight or can be taken today and reversed tomorrow. Mm-hmm. They will have an impact over a period of time. That is why there's a lot more to come as far as U.S. economy is concerned.
Right, and President Trump has secured Jerome Powell's job, saying he will not let go of him. Probably he's not an economist, but more of a lawyer even then. All right, let's move on. The U.S. House of Representatives has passed the Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins, or Genius Act, a bill to regulate U.S. dollar-pegged stablecoins, and sent it to President Donald Trump, who is expected to sign it into law. The House also passed two other crypto bills to create a wider regulatory framework for digital assets. Meanwhile, Bitcoin, world's largest cryptocurrency, surged past the $1,20,000 mark, buoyed by growing optimism surrounding crypto regulation.
Ji. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार और पश्चिम बंगाल में 12,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया. बिहार में ये परियोजनाएं रेल, सड़क, ग्रामीण विकास, मछली पालन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित हैं. पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय संपर्क को बेहतर बनाने और गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की पहल की जा रही है. इस अवसर पर श्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्वी भारत के विकास के लिए बिहार का विकास जरूरी है. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार के युवाओं को राज्य में ही रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराने के लिए काफी काम किया गया है. श्री मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा मकान बनाए गए, जिनमें से 60 लाख मकान बिहार में बने.
जब बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, और बिहार तब आगे बढ़ेगा जब बिहार का युवा आगे बढ़ेगा. हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार, बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके मिले. इसके लिए बीते वर्षों में यहाँ तेजी से काम हुआ है.
विशाल, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, द कंट्री इज ऑन अ डेवलपमेंट रोल.
जी जी. कुछ और जानकारी है कि प्रधानमंत्री ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बिहार में 61,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को 400 करोड़ रुपए भी जारी किए. विशाल, जो आज आंकड़े हैं, बिहार और पश्चिम बंगाल में 12,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, कईयों का लोकार्पण भी हुआ है. अब ये देश के पूर्वी इलाके की सूरत बदलने के लिए, उनका भविष्य तय करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है.
देखिए, ये इसका कॉन्टेक्स्ट अगर समझना है तो मैं आपको थोड़ा सा एक मिनट लेके मैं आपको 2 साल पीछे ले जाता हूँ. 2 साल पहले या 3 साल पहले, आपको याद हो, जब बजट पेश किया गया था तो उसमें एक बड़े आंकड़े की बात हुई थी, जिसमें हुआ था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 1,00,000 करोड़ होगा. फिर उसके बाद अगले बजट में उबड़कर 1,11,000 करोड़ हुआ. तो सरकार की मंशा साफ थी, और वो वहां से जो एक, जिसे कहा जाए, एक पॉलिसी की एक लाइन खींची गई, एक लकीर खींची गई, वो तय थी कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पर जो पैसा बजट में एलोकेट किया जा रहा है, ये बड़ी परियोजनाओं पे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाओं पे होगा, सोशल सेक्टर की परियोजनाओं पे भी होगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हैं. जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो पीएम आवास योजना के तहत जो घर बनाए गए हैं, उसके अलावा रेल है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम एयरपोर्ट्स की बात करें या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हब्स की भी बात करें, तो वो सब जो पैसा ईयरमार्क किया गया था, अब वो फलीभूत होता धीरे धीरे दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार में और खासतौर पर सरकार की नीतियों में कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है. आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस साल सरकार बजट में किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी सेक्टर के लिए जो है 100 रुपये अलॉट करे और अगले साल केवल 10 रुपये अलॉट करे तो हमको जो है मतलब बहुत बेहतरीन नतीजा देखने को मिलेगा. वो एक कंटिन्यूटी देखनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी रहनी पड़ेगी. कैपिटल एक्सपेंडिचर पे इंफ्रा के एक्सपेंडिचर पे लगातार पैसा खर्च हो रहा है, और ये जो प्रोजेक्ट्स हमको अब देखने को मिल रहे हैं, चाहे उत्तर भारत में हो चाहे दक्षिण भारत में हो, और आज आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया है वो बिहार और पश्चिम बंगाल में है, तो ओवरऑल देश की अगर दशा सुधारनी है और आर्थिक दशा सुधारनी है तो इंफ्रा डेवलपमेंट पर जोर देना पड़ेगा, और वो जोर दिखाई दे रहा है हमको।
Alright, moving on. Well, Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal interacted with the heads of commercial wings posted in 74 Indian missions abroad across 61 countries through video conference to review and strengthen India's global trade and commercial engagement strategy. During the meeting, key Indian missions made detailed presentations on trade promotion, challenges in market access and sectoral insights. Ministry of Commerce and Industry in a statement said that the minister acknowledged the missions as the first point of contact for India's commercial and economic diplomacy. Mr. Goyal emphasized for collaborative efforts to support India's objectives in multilateral forums such as the World Trade Organization, especially in key areas like agriculture, public stockholding for food security and fisheries subsidies. And moving on, well, India's foreign exchange reserves declined for the second consecutive week, decreasing by $3.06 billion to $696.67 billion in the week ending July the 11th, according to data from the Reserve Bank of India. This follows a $3.04 billion drop the previous week, bringing the reserves to $699.74 billion. Well, the primary reason for the decrease was a fall in foreign currency assets, FCA, which are a significant part of India's forex reserves.
जी अगली खबर हम
ऑयल पे देखिए एक नजर. ऑयल प्राइसेस एज्ड हायर टुडे एज इन्वेस्टर्स वेट न्यू यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया. एजेंसीज रिपोर्ट दैट इट्स लेटेस्ट सैंक्शंस पैकेज विल लोअर द G7's प्राइस कैप फॉर बाइंग रशियन क्रूड ऑयल टू $47.6 पर बैरल. ब्रेंट क्रूड वॉज ट्रेडिंग ओवर 0.7% अप एट $70.04 पर बैरल, एंड WTI क्रूड वॉज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 1% एट $68.19 पर बैरल व्हेन रिपोर्ट्स लास्ट came in.
जी, और एक्चुअली विशाल ने पहले भी कहा था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस अब दुनिया में कुछ नया रंग दिखाने वाले हैं.
जी, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी चल रही है रशिया यूक्रेन थिएटर को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से, और उसका जवाब जिस तरह से रशिया की तरफ से आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि क्रूड ऑयल पर मामला थोड़ा सा गर्मा सकता है.
And in the Indian bullion market, 24 carat gold was trading over 0.5% up at 98,420 rupees per 10 grams, and silver 999 fine was also trading almost 0.9% up at 1,13,600 rupees per kilogram a short while ago.
जी, और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अगस्त में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य लगभग आधा प्रतिशत बढ़कर 98,014 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था. वहीं सितंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी लगभग 1% बढ़कर 1,13,400 रुपये प्रति किलो पर थी. आज तो सोना थोड़ा सा चमका हुआ दिख रहा है एमसीएक्स में विशाल, लेकिन लग रहा था पिछले कुछ समय से कि अब सोने में चमक थोड़ी कम होगी.
मतलब अगर राजनीतिक स्थिरता है तो, हालांकि मेरा मानना है कि सोने की चमक कभी भी कम नहीं होगी, और खासतौर पर जिस दिन बाजार नीचे जाएगा उस दिन सोना और थोड़ा सा चमकता हुआ दिखेगा.
एंड आई समटाइम्स जोक एंड से वेल मेबी सिल्वर इज द न्यू गोल्ड बिकॉज सिल्वर हैज बीन राइजिंग कंसिस्टेंटली एंड
सिल्वर की मांग और भी क्षेत्र
इंडस्ट्री में है.
जी, इंडस्ट्री में है, और अभी जो डिफेंस के लिए एक नया जोर आ रहा है उसमें सिल्वर की मांग है, तो उसे लेकर उस बाजार में नई मांग से एक उसके मूल्यों में तेजी तो आ ही सकती है.
जी 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 जी
जी विशाल, कार्यक्रम में आने और चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
जी धन्यवाद.
थैंक यू विशाल. एंड फ्रेंड्स, बिफोर वी क्लोज, एज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस, बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एक्सटेंड लॉसेस टू द थर्ड कंसेक्यूटिव वीक. सेंसेक्स ड्रॉप्स ओवर 500 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स बिलो 25,000. Prime Minister Narendra Modi lays foundation stone and inaugurates multiple development projects worth over 12,400 crore rupees in Bihar and West Bengal. And oil prices edge higher today after European Union's new sanctions against Russia. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Subodh Mishra signing off. So for now, namaskar. Market Mantra.